हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम फील गुड फील लाइव। मैं हूं भावना, आपकी होस्ट आपके साथ। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच हैं समाज के, सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक, या कहिए सीनियर सिटीजंस। एंड दे आर कॉल्ड सीनियर्स बिकॉज दे हैव सीन द लाइफ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट टू द फुलेस्ट। आज आप सब यहाँ पे हैं, मैं पहले अपने लिसनर से उनका परिचय करवा देती हूँ। हमारे बीच में हैं डॉक्टर मंगल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमआर डेंटल कॉलेज, सीएमओ रिटायर्ड भी हैं ये। इसके अलावा हैं हमारे पास कोऑर्डिनेटर पीके खुल्लर, जो कि अपना एक एनजीओ चला रहे हैं बाय द नेम ऑफ एबल चैरिटीज। हमारे साथ एक और भी हैं वरिष्ठ नागरिक, जो हैं श्री एस एल आहूजा जी। 1991 में ये रिटायर हुए एज डिविजन इंजीनियर टेलीफोन्स। और हमारे बीच में हैं श्री डीपी भानोट, हु रिटायर्ड इन 1995 एज सीनियर लेक्चरर हरियाणा गवर्नमेंट, हु इज प्रेजेंटली इन्वॉल्व विद मानव रचना। आप सब यहाँ पर आए सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर स्टूडियो।
थैंक यू।
सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, यू हैव रीच्ड टू द फुलेस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स इन लाइफ, कैसा लगता है ये सफर?
वेल, मैं नहीं कहूँगा कि ये फुलेस्ट है, क्योंकि अभी तो जीवन काफ़ी लंबा है। मैं समझता हूँ कि अब मेरा जो समाज के प्रति कर्तव्य है उसको निभाने का समय है, जो मैं करने की कोशिश करूँगा।
आप बताइए, स्कॉर्नलियर फुलर जी से हम जानना चाहेंगे।
मेरे पर्सनल अगर अपना सुनी तो मैं तो अभी काम शुरू किए हूँ
जी,
और इस स्टेज पर हूँ कि जब मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि जो काम अभी किया है वो सिर्फ थोड़ा सा है और आगे लंबा सफर पड़ा और बहुत काम पेंडिंग पड़ा है जो करना है मुझको।
बिल्कुल बिल्कुल, यही क्वेश्चन मैं श्री आहूजा जी से भी जानना चाहूंगी।
मैं रिटायरमेंट के बाद टेलीफोन डिपार्टमेंट से अटैच था
जी।
तो मेरा इच्छा यही रही है कि किसी प्रकार से टेलीफोन के अंदर विकास के ख्याल से जो पीसीओ वर्कर्स हैं कंट्री के अंदर, तो उनके साथ मैं जुड़ गया
जी।
और करीबन बीएसएल के 25 लाख वर्कर्स हैं देश के अंदर जो पीसीओ काम कर रहे हैं
जी।
और मैं उनका आजकल सेक्रेटरी जनरल भी हूँ ऑल इंडिया का
जी जी।
और फिर मुझे उनके लिए जैसे काम कम होता गया, बिकॉज यू नो कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन आ गया था,
बिल्कुल।
तो फिर हमने एक कंपनी फ्लोट कर रखी है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, जिसका नाम है IPTL, इंडियन पीसीओ टेली सर्विस लिमिटेड। इट्स ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये नेटवर्किंग के ऊपर है। हमें 14 सर्कल्स का BSL ने फ्रेंचाइज दे रखी है
जी।
तो माई एम इज हाउ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीसीओ वर्कर्स
जी।
दिस इज माय मेन एम एंड आई एम।
और भानु जी से मैं आपसे जानना
चाहूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस पैराडॉक्स थ्रू लिटरेचर। बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़ा प्ले राइट हुआ है, उसने कहा है स्पेल ऑफ लाइफ में दैट वन इज नॉटी आफ्टर 40।
ऑफ कोर्स
बर्ट्रेंड रसेल एंड अदर फिलोसोफर राइटर हुए हैं, उन्हें कहा लाइफ बिगिंस आफ्टर 40। अकॉर्डिंग टू हिज एक्सप्लेनेशन लाइफ मैच्योर्स इवन आफ्टर 60
जी।
अकॉर्डिंग टू माय कन्विक्शन, मैन इज नोन बाय नॉलेज,
एब्सोल्युटली,
नॉट बाय एनी अदर एल्स। ही मे बी पोजेसर ऑफ एनीथिंग एंड नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिपार्टमेंट्स। वन इज नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन
जी,
एंड वन इज नॉलेज ऑफ द एटर्निटी
जी।
सो आई बिलोंग टू the disciple who is involved in knowledge of the eternity.
Okay.
इसी समझ तरीके से मैंने किताब लिखी है, the title is the spiritual lore.
जी.
I have taken up issue whether material knowledge should precede spiritual knowledge and vice versa.
Okay.
I am of this opinion that it is the only spiritual knowledge which can steer material knowledge. If the material knowledge is steering the spiritual knowledge, we reach nowhere.
जी. Absolutely. स्क्वाड्रन लीडर खुल्लर जी से मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा था कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग माई वर्क नाउ, जब हम अपनी जॉब्स कर रहे होते हैं तो हम इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में कि हम भूल जाते हैं हमने कुछ और भी करना है, जो हमारा दिल चाहता है शायद ये भी हम नहीं कर पाते हैं। क्या वाकई आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद हमें ये सब करने का मौका मिलता है?
बबरा जी, ऐसा है कि जहाँ तक मेरी पर्सनल जिंदगी का ताल्लुक है, जब मैं फौज में था
जी,
और अभी सिर्फ तकरीबन समझिए कोई 11-12 साल की सर्विस थी मेरी उस वक़्त, तो एक ख्वाब, एक सपना देखा था, वो ये था कि भाई हमको मेडिकल सर्विसेज रूरल एरियाज में डेवलप करनी चाहिए। मैं एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया में काम करता था, बीदार करके, कर्नाटका में है, अब तो शायद कुछ डेवलप सुना है हो गया है। उस वक़्त वहाँ सारी डिस्ट्रिक्ट में 2 ही पेट्रोल पम्प थे
जी।
और वहाँ देखते हुए कंडीशन इतना मन को तकलीफ हुई कि वहाँ पर अगर क्योंकि मुझे शौक़ था घूमने का, स्कूटर मोटरसाइकिल लेके मैं बहुत घूमा करता देखा करता था इलाके को, कहीं भी कोई भी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नज़र नहीं आती थी। बीसियों सैकड़ों मील चले जाओ आप तो ऐसा जंगल सा इलाका था, लोग रहते थे, पानी भी नहीं था। तो वो एक ख्वाब लेके जब मैं चला तो फिर मैंने अपनी अर्ली रिटायरमेंट ले ली। मैंने 20 साल की सर्विस के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी इस ख्वाब से कि मैं काम करूँगा। और लेकिन मुझको क्योंकि पैसे का अभाव फौजियों को रहता है रिटायरमेंट के बाद, और फिर अर्ली रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा हो जाता है, बच्चे छोटे थे, तो मुझको ये काम शुरू करने में तकरीबन समझिए 1982 से लेके तो 93 तक 11 साल अपने आप को लग गए। और 11 साल में एक छोटा कमरा जैसे ये है 150 फुट का, वहाँ से शुरू किया और आज हमारे पास एक 40,000 स्क्वायर फुट का एक हॉस्पिटल है और हमारे पास 50 बेड्स हैं जो कि हम अगले 3-4 महीने में 100 बेड्स का करने जा रहे हैं। और फिर इसी के अंदर अंतर्गत क्योंकि फैसिलिटीज़ की कमी गरीब आदमी के लिए बहुत कम है, गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट ने बीपीएल बनाया लेकिन वो 60-50% मैं देखता हूँ गाँव में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 17 साल से
जी।
वो अमीर आदमी ले जा रहा है,
बिल्कुल
अगर 100% नहीं तो कम से कम 50% तो मेरा अंदाज़ा है ज़रूर। और उसके अंदर जो विधवा औरतें हैं
हाँ जी,
उनका हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है,
उनकी हालत काफ़ी बद।
तो फिर हमने 2-3 प्रोजेक्ट शुरू किए, उसमें एक प्रोजेक्ट है विडोज़ मेडिकल एड प्रोग्राम। और विडोज़ मेडिकल एड प्रोग्राम में इस वक्त हमारे पास 550 करीब विधवा औरतें हैं जिनको हम फ्री मेडिकल सर्विस देते हैं, एंड दैट डज नॉट मीन एनी रिस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स अनलिमिटेड मेडिकल सर्विस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मनी और सर्विसेज। इसी तरह से फिर उनके बच्चों को पढ़ाई की प्रॉब्लम है क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास, तो हमने फिर इनको उनके बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया दैट इज़ नोन एज मेडिकल एंड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर ऑर्फन्स एंड चिल्ड्रन ऑफ विडोज। तो हम सारे गांव के अंदर जाते हैं और जो ऑर्फन बच्चे होते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो इस वक्त हमारे पास 40 ऑर्फन बच्चे हैं, कॉम्प्रीहेंसिव मेडिकल एंड कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स नॉट गवर्नमेंट स्कूल्स, उसका भी एक अलग डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। और इसी तरह से विडोज़ के बच्चे हैं तो 350 हमारे पास विडोज़ के बच्चे हैं, 40 इस वक्त ऑर्फन्स हैं और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑर्फन्स को। और जब मैं कहता हूँ कि कॉम्प्रीहेंसिव मेडिकल सर्विस तो हम हर यहाँ तक हार्ट ऑपरेशन भी करवा देते हैं बच्चों का। दिल्ली के अंदर हमने पिछले 2.5 साल में हमने 9 ऑपरेशन विडोज़ के बच्चों के, हमने 9 ऑपरेशन हार्ट के, ओपन हार्ट सर्जरीज, वॉल रिप्लेसमेंट वगैरह करवाया है। ऑल द एक्सपेंडिचर वॉज बॉर्न बाई अस। तो क्योंकि आप जानते हो कि लड़कियां, फीमेल्स इन जनरल, एवरीबॉडी वांट्स देम, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ डॉटर, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ वाइफ, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ मदर, विदाउट दैट नथिंग कैन वर्क, बट दे डोंट वांट टू हैव स्मॉल गर्ल्स, उनको कत्ल करना चाहते हैं। और मेरे पास एक किस्सा नहीं है बल्कि मेरे पास कई किस्से हैं और उनमें से एक किस्सा ऐसा है कि एक लड़की झाड़ी में मैंने उठाई, ठीक है क्योंकि मैं जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि हम बच्ची को ख़त्म करने जा रहे हैं आप लोगे, तो मैंने वो कहा कि आप मैं अभी आ जाऊँ, तो कहते देखिए इस फलाने गांव में आ जाओ, तो मैंने कहा भी मुझे घंटा लग जाएगा गाड़ी चला कर आने में, रात के वक्त 12:30-1 का वक्त है। तो उन्होंने कहा हम 5:15 तक आपका इंतज़ार कर सकते हैं, तो मैंने कहा भी मैं 5:15 नहीं, मैं 4:45 पहुँच जाऊँगा। तो मैं वहाँ 5 बजे करीब पहुँचा, देरा था थोड़ा सा, तो टेलीफोन पे हम कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा फलानी झाड़ी में बच्चा पड़ा है, तो वो अभी 6 घंटे की लड़की थी, तो उस लड़की को हमने पिकअप किया, सारा दिन रखा, फिर अडॉप्ट करवाया। और अडॉप्शन एजेंसी मुझे ये कह रहे हैं कि जहाँ लड़की वो गई है उस घर की जितनी कारों की कीमत है उतनी आप 2 जीवन में कमा नहीं सकते
जी।
तो जीवन में लड़कियों का, तो हमने फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट एक प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि हमने फ्री डिलीवरीज हम करते हैं, जितनी भी रूरल एरिया की लौटते आती हैं फ्री डिलीवरीज करते हैं। और क्योंकि विडोज़ का हालत बहुत ख़राब है तो हम विडोज़ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नीचे उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी 7-8 दिन हुए, हमने 2,000 स्कार्फ्स हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किए हैं अंडर दैट प्रोग्राम। So these are multifaceted program which I started in last 17 years of this work, but this is a very small, insignificant work.
कहीं ना कहीं लगता है सपना पूरा हो रहा है. बहुत सालों पहले कंसीव किया.
बहुत अधूरा है. बहुत अधूरा इसलिए है कि डॉक्टर्स नहीं मिलते.
जी.
डॉक्टर्स बहुत महंगे हो गए हैं और डॉक्टर्स फेल हो गया मैं टू गेट देम आइदर फॉर मनी और फॉर लव. Neither for service nor for money. I couldn't give them enough money because their aspirations are always more than what I could give. I give them more than what government pays them, but still there's some lacuna in my own character. I feel that the people are not serving that community, that sense, that segment of society, because jo widows hain, 40 million widows hain India ke andar, 30 million widows rural India ke andar rehti hain. और अगर आप मेरे साथ कभी चलना चाहें तो अगर आप अपना रो के नहीं आएंगी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इंसान नहीं हैं.
हालात काफ़ी बदतर हैं हमारे भारत के, ये मैं बिल्कुल जानती हूँ. और औरतों के साथ तो उससे भी ज़्यादा, मर्दों से लेके औरतों से अगर हम कंपेयर करें तो वो काफ़ी बदतर है. आपका क्या कहना है डॉक्टर मंगत, आप तो रिटायर्ड CMO रहे हैं.
ये निश्चित रूप से ठीक बात है कि हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो गए हैं, वास्तविकता यह है कि नारियों की जो स्थिति हिंदुस्तान में है वो किसी भी देश से ज़्यादा बुरी है. और स्पेशली वो लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं और इकोनॉमिकली अपने हस्बैंड पे या और परिवार के दूसरे सदस्यों पर डिपेंडेंट हैं. मैं यहाँ बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि हमारे रूरल एरिया में एक स्त्री, बहुत कम ऐसी स्त्रियाँ मिलेंगी जो नहीं कमाती हैं, इन दी सेंस कि वो काम नहीं करती हैं. जैसे मान लो एक किसान की बीवी है तो वो उस किसान से ज़्यादा काम करती है. ठीक है, मेरा कुछ जीवन गांवों में गुजरा है और मैंने देखा है कि बेसिक जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो स्त्री को वहाँ अवेलेबल नहीं है. ट्रीटमेंट तो बहुत बहुत आगे की बात है. तो मैं कुलर साहब की इस बात से बहुत सहमत हूँ और स्पेशली विधवाओं का तो समाज में बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, इसमें कोई शक नहीं.
चलिए अब मैं एक बड़े पर्सनल नोट पे आऊँगी आप लोगों के साथ. अभी हम बात कर रहे थे आप लोगों के देखे हुए एक सपने की, आप लोगों ने लाइफ के अचीवमेंट्स को अचीव किया है, आप लोगों ने बचपन में जो सपना देखा था, लाइक यूथ यू मस्ट हैव सीन सो मेनी ड्रीम्स, और वो आप लोगों ने पूरा किया, आप रिटायर भी हो गए. उसके बाद आपको बताइए कि कैसा लगता है आप ये जीवन, ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ऊंचाई पे बैठ के अब आप जीवन को देख रहे हैं कि वी अचीव्ड एवरीथिंग एंड नाउ वी आर वॉचिंग एवरीथिंग हाउ थिंग्स आर हैपनिंग.
अचीवमेंट की अपनी अपनी परिभाषाएं हर आदमी बनाता है, जो मेरा ख्याल है हर साल बदलती रहती हैं उस आदमी के लिए भी. ठीक बात है कि हम लोग जब नौकरी में थे तो सोचा करते थे कि अगर ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा
जी.
पर बाद में उस रेखा को हम आगे ले जाते हैं कि भाई अब ऐसा हो जाना चाहिए. तो केवल पैसा ही बात नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मन का संतोष है और हम क्या कर पाए हैं ज़िंदगी में. और स्पेशली जैसे मेरा प्रोफेशन रहा है, मैं डॉक्टर रहा हूँ, खुलर साहब की बात को सुनकर मुझे बहुत दुख होता है कि ये सच है कि इस समाज में ऐसे डॉक्टर्स जो जिनका थोड़ा भी लगाव अपने प्रोफेशन से रहा हो बिगर पैसे के, वैसे में लोगों का मिलना बहुत कठिन है. इसलिए लेकिन मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कारण रहा है गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े रहने का, क्योंकि हम लोग उन लोगों को जो बहुत गरीब थे कुछ कर पाए, वरना हर आदमी की तरह से मैं भी शायद प्रैक्टिस में जाके और पैसा कमा सकता था. और मैं अभी भी यही कहता हूँ कि जो लोग कम से कम गवर्नमेंट सर्विस में हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि सरकार ने उनको एक ध्येय के लिए रखा हुआ है, उसको वो निश्चित रूप से पूरा करें.
मौका तो वैसे प्राइवेट सर्विसेज वालों को भी मिलता है पर कहीं ना कहीं उनके हाथ बंधे रहते हैं या क्या कहिए, वो उतना दे कैन नॉट रीच अप टू दैट.
प्राइवेट वाले का ध्येय कभी भी सेवा करना नहीं हो सकता, ये मैं अपनी मेरी सोच है कि अगर उसने प्राइवेट में ही अगर सेवा ही करनी होती तो वो प्राइवेट में नहीं आता.
मैं एक अगर इजाजत दे तो छोटी सी बात कहूं. मैं फॉर एग्जांपल बहुत प्रोपगेट करता हूं इस बात को या कहता हूं लोगों से, डॉक्टरों से, डॉक्टर कम्युनिटी से, कि भाई जो लोग रिटायर हो चुके हैं अगर वो हमारे पास आ जाते हैं, खासकर स्पेशलिस्ट हमें चाहिए, जैसे कि हमारे पास सर्जन है, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारे पास एनेस्थेस है, लेकिन एक चीज़ रुक रुक गई बीच में जो नहीं मिली हमको, 8-10 महीने हो गए, अल्ट्रासाउंडिस्ट. अब रिटायर्ड आदमी हैं, कहीं रह रहे हैं, हम उनको रहने के लिए एयर कंडीशन जगह देने को तैयार हैं, खाने के लिए खाना फ्री देने को तैयार, और बढ़िया जो चाहें वो खरीद लें, ओके. लेकिन हमको इस सेवा के एंगल से कोई आदमी नहीं मिल रहा, सालों साल हो गए ये प्रोपेगेंडा करते हुए. और इतनी नीड है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ले चलूं, अगर अल्मोड़ा के आगे मैंने सफर किया तिब्बत बॉर्डर तक, 2 साल हुए, 10 घंटे की कार की जर्नी के ऊपर हमें एक डॉक्टर नहीं मिला. दस घंटे की तिब्बत एक मंसियारी करके जगह है, और जो लोग इस प्रोग्राम को सुने तो वो मंसियारी जरूर जाएं, क्योंकि इस वजह से प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। इतनी खूबसूरत परमात्मा ने वो जगह बनाई। मेरे ख्याल में मैंने 28-29 देश देखे हैं, कनाडा देखा, अमेरिका देखा, स्विट्जरलैंड देखा, लेकिन जो मंसियारी का इलाका खूबसूरत देखा वो कहीं नहीं देखा। इतना खूबसूरत, मैंने सारा हिंदुस्तान भी 4 दफ़ा देखा। लेकिन कोई भी लोग सेवा की एंगल से आकर अपना बुढ़ापा या अपनी उम्र, जबकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, पैसा भी है, क्यों नहीं आते हैं? ये मुझे इस बात का आंसर हिंदुस्तान के अंदर नहीं। मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी 3 महीने हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से 4 यंग डॉक्टर्स आए थे, अगले महीने फिर 5 डॉक्टर आ रहे हैं इंग्लैंड से, उसके बाद फिर 5 डॉक्टर आ रहे हैं सितंबर में कनाडा से। लोग आते हैं हमारे पास, काम करते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने, गांव में ले जाता हूं गर्मी सर्दी में उनको। लेकिन हमारे पास यहां का यूथ या यहां का गांव में, और ये तो मैं बात कर रहा हूं दिल्ली से 80 किलोमीटर पर, अल्मोड़ा और अगर झांसी से अगर आप जाइए ट्राइबल एरियाज में, तो मैं गया हूँ तो 130 किलोमीटर तक एक क्या बोलते हैं उसको PHC भी नहीं था। आप अंदाज़ा करिए कि मैं ऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ी भारी नीड है, इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं एंगल से कर रहे हैं। तो ये आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई कहाँ पर है, अभी तो शुरुआत भी नहीं, अभी तो सरफेस भी स्क्रैच नहीं हुई हमसे। हम तो सच्ची बात इसलिए ख्वाब देखते रहते हैं और बड़ा बनेगा, यहाँ बनेगा, अल्मोड़ा में बनेगा।
मानव रचना बने रेडियो स्टेशन के सौजन्य से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जितने लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर कुल्लर जी की बात सुनी है, अगर निस्वार्थ भावना की आज भी कमी है हमारे यहाँ सर्विसेज के मामले में, मेडिकल डिपार्टमेंट के मामले में, तो वो जरूर जुड़े एबल चैरिटीज से। अवजय जी आप बताइए, जैसे आपने कहा कि आपने एक कंपनी सेटअप कर ली है, पर्सनली आप लगता है आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गए हैं कि हाँ अब मैं कुछ सर्विसेज कर पा रहा हूँ बिसाइड्स व्हाट मैं जॉब करता था पहले?
मैडम ऐसे है, मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ
जी।
कैसे कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि एम्प्लॉयमेंट को मैक्सिमम प्रेफरेंस दी जाए इन NGOs एक्सेट्रा जो बनाई हैं सभी, हमारा एम यही था कि इन 2007 के अंदर मैं बेंगलोर गया, मैं ऑल इंडिया बॉडी की कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहाँ हम लोगों ने फैसला किया कि जो PC वालों का काम सडनली ये डाउन चला गया, एज यू नो द कॉल रेट्स हैव कम डाउन, जिस PC पे 5 आदमी काम करते थे 1991 के अंदर, व्हेन आई वाज इन द सर्विस वी यूज्ड टू सैंक्शन PCOs, और इतनी डिमांड थी, जैसे जो मंत्री आता था ही वुड गिव सम स्पेशल कंसेशन टू हिज ओन स्टेट ताकि लोग PCO ज्वाइन करें, और हर PCO वाला अच्छा कमा रहा था, और हमें खुशी थी चलो भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही, 5 आदमी एक PCO पे काम करते थे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता गया कि कंप्यूटर भी आ गया, लोगों को फैक्स भी मिल गया साथ में, एक फोटोस्टैट होता है, तो दे बिकेम सेमी स्किल्ड वर्कर्स। मोस्टली PCO वाले के पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, दे बिकेम सेमी स्किल्ड पीपल, और 10 साल जब काम कर लिया इससे क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि यू नो जो रेट थे एटलीस्ट 50% डाउन हो गए। जो काल बॉम्बे की आपको याद होगा 2 सेकंड की होती थी उन दिनों 91 के अंदर पल्स, तो इसके 10 साल के बाद जो है एट ऑलमोस्ट 5 सेकंड एट पार हो गई इंडिया के अंदर फॉरेन के साथ में, जस्ट लाइक बॉम्बे देयर इज नो डिफरेंस नाउ। जो हम मीटिंग करते रहे तो हमने सोचा ऐसे करें कि वी शुड ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन कमर्शियल लाइंस, तो हमने कमर्शियल लाइन के लिए IPTL कंपनी हमने फ्लोट की, इसका नाम रखा इंडियन PCO फॉर द वेलफेयर ऑफ द PCO होल्डर, सो दैट दे डू नॉट सफर। एंड वी रोट टू द प्राइम मिनिस्टर इंडस्ट्रीज ऑल्सो कि दिस इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देयर इज नॉट मच इन्वेस्टमेंट, दे कैन एम्प्लॉय, दे कैन इवन टू लिंक विलेजेस, वहाँ भी हम इसके थ्रू जा सकते हैं, एंड दे कैन बी वेरी गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल एरियाज। इसे कहते हैं ICT भी कहते हैं, इंडियन कम्युनिकेशन इन्फो टेक्नोलॉजी IF, तो उसके थ्रू ये है कि एक स्वामी नाथन साहब है हमारे मद्रास के, तो उनके साथ भी कई दफ़ा हर साल मीटिंग होती है कि हाउ टू रीच विलेज, इट इज़ थ्रू ICT ओनली, थ्रू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी कैन गो टू। एंड वंस वी सेटअप ए PCO देयर, PCO में क्या होता है जी, एक गांव का ही हमें आदमी लेना चाहिए, गांव का जो होता है ही हैज गॉट स्मॉल हाउस, ही इज सिक्योर, एवरीबडी नोज हिम, एंड थ्रू दैट वी कैन डू द एनी वर्क ऑफ NGO सेफ पीपल, देयर इज नो द विलेजर्स हैव नो अकाउंट्स इन द बैंक्स, इन इंडिया 90% विलेजर्स हैव नो अकाउंट्स एट ऑल, दे डू नॉट नो हाउ टू कीप मनी एंड वेयर टू कीप, वेयर दे कीप इन द
जी हां उन्हें इन्वेस्टमेंट की और इतनी जानकारी नहीं होती है
दे डू नॉट नो हाउ टू इन्वेस्ट मनी
बिल्कुल
एंड दे कीप देयर कैश क्राफ्ट्स जो उनका दे कीप इन देयर हाउस ऑन
इधर हां इधर इट इज इन टर्म्स ऑफ
जस्ट नॉट इट सेंट इन सर्कुलेशन
बिल्कुल
द इकोनॉमिक्स जो कहती है कि पैसा शुड बी इन
सर्कुलेशन बिल्कुल
तो वी हैव बीन सजेस्टिंग देम कि जो बैंक्स हैं अब चल रहा है सारा काम दे शुड ऑल्सो बी ओपनड थ्रू सिंगल विंडो थ्रू दैट पीसी ओनली विच कैन सर्व एज ए गवर्नमेंट agent so we have got them approved and in haryana ke andar jaise rohtak hai panipat hai sirsa hai government approve kar diya hai ki yahan par banks khole jaye they are called mini banks
ji
sbi ke andar maine bhi kuch kaam karwaya inka ab chal raha hai assam mein chal raha hai usse kya hoga ki this small I wrote my world this small scale industry not much investment
bilkul
but it can give more employment than other industries
ji
self dependent
बिल्कुल
यू डोंट नीड अ बिग स्पेस
बिल्कुल
एंड ए मैन नोन द विलेज ही कैन डू एनी जॉब ही कैन इवन मनी ट्रांसफर कैन बी डन ऑन मोबाइल सिस्टम दिस इज कम्युनिकेशन अगेन तो ए पीसीओ कैन बी ए बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी विलेज एंड ही कैन इवन मेडिकल डॉक्टर्स आर देयर दे आल्सो अप्रिशिएट मेडिकल कंसल्टेंसी इज बीइंग डन नाउ फ्रॉम यूएसए टू वेयर दिस
बिल्कुल
मानोज
जी आपसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी क्या आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं
नहीं मेरा आई हैव अ सन एंड अ डॉटर
हाँ जी
और मेरा बेटा तो लंदन में है ही डिड हिज एमबीए फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी एंड ही इज मैरिड देयर एंड माय डॉटर इज आल्सो मैरिड शी इज मैनेजर इन सम फर्म एंड शी इज मैरिड एंड शी इज नॉट आल्सो लिविंग विद
देखिए
एज पेरेंट्स विद मी शी रिटायर्ड एज अ मैनेजर सीनियर मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पटना
जी भानोर जी एज अ पेरेंट क्या आपको लगता है कि आपके बेटे ने आपके साथ रहना चाहिए था Instead of moving to London, he should stay with you. As a senior citizen, as a parent, what do you feel?
ऐसा है मैडम के आई एम
आपके थ्रू भानु जी आपके थ्रू मैं अपने लिसनर्स को और आज के यूथ को आवाज देना चाहती हूं
टीचर नेवर रिटायर्स और टीचर बच्चों को क्या देता है
जी
दो चीजें देता है नॉलेज कौन सी नॉलेज नॉलेज दैट कैन रिमूव फियर
जी
यहां पर मैं टैगोर की लाइन कोट करना चाहूंगा जैसे लंबी पोएम में एक ही काफी है वेयर The mind is without fear. The head is held high.
Absolutely.
Knowledge is free. This country is not known as skyscrapers country or skype or specialists.
See.
This country is known only by one knowledge. Knowledge of eternity. हमारे आगे दुनिया इसलिए झुकती है कि हम उन ऋषियों की औलाद हैं जिस ऋषियों ने वेद उपनिषद गीता ब्रह्म सूत्र दिए हुए और जिसको कोई माँ का लाल इतनी जल्दी समझ नहीं सकता है
जी।
इसलिए यूएसए में इफ आई गो आई वुड गेट मोर रिस्पेक्ट इवन देन माय कोलीग्स हियर मैं तो उनको स्पेल बाइंड कर दूंगा दो मिनट के अंदर
बिल्कुल
तो सोल व्हाट इज इट वी डू नॉट नो मेडिटेशन वी डोंट नो
जी
और दूसरी बात ये जहां तक मेरे पूछा कि दीज आर दी बैड पॉइंट्स एवरी फैमिली इज गेटिंग डिसइंटरेस्टेड Due to one reason or the other. मेरे यहाँ के बच्चे बाहर चले गए बाहर कमा रहे हैं
जी.
तो अदरवाइज फैमिली भी अदरवाइज डिसइंटीग्रेट हो रही है जिसके बच्चे बीच में रह रहे हैं अब इन्होंने क्वेश्चन किया वायलेंस का या इल ट्रीटमेंट का विलेजेस में डोमेस्टिक वायलेंस विदाउट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी शहर में डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज ऑफ प्लेंटी विलेजेस में पढ़ता नहीं कोई बिकॉज ऑफ पॉवर्टी और शहर में इसलिए पढ़ता बिकॉज ऑफ प्लेंटी आई एम ए टीचर आई एम सो मच फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज गेटिंग डाउन सो बैड मेरे तीन क्राइटेरियन है एज ए टीचर पहली बात तो है कि जिसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती उसको मैं अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हिंदी में बोल रहा है जानबूझ के जिसको जिसने फिलोसफी नहीं पढ़ी
जी.
चाहे वो मेटीरियल फिलोसफी है चाहे वो स्पिरिचुअल फिलोसफी उसको भी मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं तीसरा जनरल नॉलेज जिसकी जनरल नॉलेज चाहे वो 70 साल का है चाहे वो 6 साल का है
जी.
अगर उसको ये नहीं पता इंडिया की कैपिटल दिल्ली है या नई दिल्ली है तो मैं उसको पढ़ा लिखा कल ही मैं क्लास के अंदर बच्चों को एथिक्स रिवीजन कर रहा था, तो क्लास में कहा सर छोड़ो आज आप थोड़ा जनरल करते हैं। मैंने कहा भी जनरल मेरे से कम टेस्ट मत कराओ, डोंट पफ अप योरसेल्फ सो फॉर नॉलेज। नहीं सर पूछो
जी।
डॉक्टर साहब मैंने उनको ये पूछा कि स्पेन की कैपिटल कौन सी है, ऑल वर नॉन प्लस नंबर वन, एक्सक्यूज मी। मैं कहा चलो ये तो आप किस कौन से कॉन्टिनेंट में बता दो स्पेन। दे वर गेट नॉट एंड दे आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्लस टू करके आए।
सर देखिए मैं कुछ चीज़ों से सहमत हूँ आपकी, से कुछ सहमत इस हिसाब से नहीं हूँ कि अगर आप देखें ठीक है देश हमारा बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जाना जाता है, लेकिन ये भी बात आप मानेंगे कि उसके साथ साथ टेक्निकली भी हमें बहुत साउंड होने की आवश्यकता है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे वो फिजिक्स हो मैथ्स हो।
सर वो आपकी बात सही है, विवेकानंद ने यही कहा कि सेल्फ को तीन में बड़े, फिजिकल सेल्फ, फिजिकल सेल्फ आपका ला कि फिजिकल सेल्फ बॉडी है, अगर ये ठीक नहीं है तो बाकी क्या रहेगा।
सर देखिए
देन मेंटल सेल्फ,
मैं वो आप बात मानता हूँ कि जैसे हम लोग गीता के लिए कहते हैं कि ये इससे वे ऑफ लिविंग, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जब रिटायर होने को आते हैं तब वो गीता की तरफ झुकते हैं। बेसिक चीज मैं अभी भी मानता हूँ कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली हमारा देश पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए वर्ग हैं। एक किसी भी समाज का जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग होता है, नीचे वाले ज़्यादातर नीचे होते हैं, ऊपर वालों को कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा एक जो मध्यम वर्ग है, आम आदमी पैदा होने से रिटायर होने तक वो बेचारा दो समय की रोटी, एक ढकने के लिए सर ढकने के लिए मकान और अपने बच्चों की पढ़ाई में ही समय निकाल देता है, तो वो इसी को स्पिरिचुअल गेन मानता है। ठीक है ना सर, मैं केवल जो आपसे कहना चाहता था वो ये था कि देखिए टेक्निकली हम लोग बहुत साउंड हैं, हमारे बच्चों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। आज अमेरिका हमसे डरता है तो वो इन फिजिसिस्ट और इंजीनियरों के कारण है और पॉलिटिशियन के कारण नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। तो बच्चे बहुत अच्छे भी हैं और नेचुरली बहुत खराब भी हैं और बीच वाले भी हैं। सर
सर आपसे ज्यादा ताल्लुक yes. मेरा बच्चों से रहा
है, मैं मानता हूं इस बात को,
मुझे कहना पड़ेगा ब्लेंड ऑफ ऑल है।
यस
तो
लेकिन एक प्रोफेसर साहब को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा
जी।
प्रोफेसर साहब मैं कोई आज से कुछ 7-8-9 साल की बात है, अमेरिका में डलस के अंदर मेरे को एक लेक्चर के लिए एक स्कूल में गया मैं
जी।
बहुत बड़ा स्कूल था, मेरे ख्याल में रफली 3-4 हज़ार स्टूडेंट थे और उनके जो सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स थे प्रिंसिपल ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। बट मैं एक्चुअली जाता हूँ मोस्टली लोगों से मिलने के लिए, फंड रेजिंग करने के लिए। तो मुझे उन्होंने कोई वहाँ पर 50-60 बच्चे होंगे और सभी काफ़ी एज के लगते थे, 15-16 से ऊपर, 16-17-18 शायद। तो मैंने उनको ये पूछा कि भाई आप अमेरिका में रहते हो, बड़ा अच्छा कंट्री है, तो मैं इंडिया से आया हूँ, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट इंडिया।
किताबों में छप चुके हैं
राइट सर। तो जब मैंने उनसे पूछा तो आप अंदाजा करिएगा कि स्वाय एक लड़की के किसी ने ये नहीं बतला पाया कि इंडिया का साइज क्या है, इंडिया की आबादी कितनी है, इंडिया लोकेटेड कौन सी कॉन्टिनेंट में है और इंडिया का क्या कुछ रोल है। तो मैंने जिस लड़की ने मुझे जवाब दिया तो मैंने कभी सारे क्लास में से 60-50 बच्चों में से ओनली यू आर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, आई डिड माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इन 58। और तो लड़की से पूछा कि व्हाई यू यूज इंडिया इज ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर यू और समथिंग, सेड नो माय नेबर इज इंडियन कीप्स ऑन टेलिंग। तो इसलिए सर के वो भी उतने ही ज़्यादा अनपढ़ है।
डॉक्टर साहब मैं वैसे इनकी बहुत एग्री करता हूँ कि मटेरियल प्रोग्रेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हम नहीं कर रहे तो ये मटेरियल प्रोग्रेस किसी मेरी अमेरिकन लिटरेचर में स्पेशलाइजेशन है, अमेरिकन लिटरेचर मैंने पढ़ाई है, अमेरिकन से भी ज़्यादा अमेरिका को मैं जानता हूँ। तो अमेरिकन ने क्या किया, जब ये थे ना अपना क्रिश्चियंस जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे, 1660 में जब इनको लात मारने लगे तो ये अमेरिका में चले गए। अब इंटेलिजेंट थे, इन्होंने कहा ये बड़े एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हुई, प्रेंटी आ गया, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन भी आ गया। तो अमेरिकन क्रिश्चियन अमेरिकन ये कहा कि ऐसा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को हम थोड़ा बैक गिर करते हैं, मटीरियल वेल्थ तो हम बड़े जल्द, उन्होंने फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर को छोड़ के फैक्ट्री में चले गए। तो उस वक्त जो स्टेटस सिंबल थे, जब एग्रीकल्चर थी जो आदमी घोड़े पर जा रहा है तो ही रिच मैन, रेंच में घूम रहा है लेके, फिर जब कार इन्वेंशन तो कार स्टेटस सिंबल हो गया शेवरलेट, फिर रॉकिंग चेयर हो गया एमडी हैविंग ए रॉकिंग चेयर। तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअल वैल्यूज हम बाद में लाएंगे, अभी तो और रिच, ये तो अभी 5 साल पहले की बात भी हो सकती है। रॉच अब वो सोचते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज तो हम ला ही नहीं सकते।
सर आप एक बात बताएं सर कि आप क्या उम्र समझते हैं कि जब एक आदमी को स्पिरिचुअल जानकारी होनी चाहिए?
स्पिरिचुअल तो इटर्नल है सर, इट इज इन बिल्ट।
यस दैट इज व्हाट द पॉइंट
ऑफ फॉर डिस्कशन, यू आर टू बी अवेयर ऑफ दैट इज द दैट इज द सर आफ्टर 16
नो सर दैट इज द ऑलवेज ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बिकॉज़ एक बच्चा जो अपने फ्यूचर को अपना सब कुछ मानता है 10+2 वाला, वो हरदम आईआईटी के लिए जो आदमी सोच रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है स्पिरिचुअलिटी की। विद ऑल सेड एंड डन आई कैन जस्ट टेल यू ठीक है मैं आपसे 2-4 साल की उम्र में
कर देखिए सर कर रहे हैं,
हम यूएसए के एक प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वो बेचारा बुश गांव गांव जा जाके ये कहता कहता थक गया, अरे भैया मैथ्स पढ़ लो वरना वो हिंदुस्तानी आ जाएंगे। यू सी यस इन सम केसेस वी हैव रियली डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग। और ये सर ये जो छोटा बड़ा और वो जो कम और पढ़ा लिखा है ये रहेगा सर, अगले 10 साल तक भी ये रहेगा, ठीक है ना? दिस इज व्हाट आई फील।
चलिए अब इस मोड़ पे मैं आप सब लोगों का ट्विस्ट एंड टर्न कर देती हूँ क्वेश्चन को। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर मंगल, आप बताइए कि आर योर चिल्ड्रन विद यू एंड हाउ डू यू फील? आपको लगता है कि हर बुजुर्ग का या हर बड़े वरिष्ठ नागरिक का या सीनियर सिटीजन का बच्चों का उनके साथ रहना?
नहीं, मेरा दृष्टिकोण ये नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों में ये सोच है कि हम अपने कैरियर में अपने पैसे में अपनी बुद्धिमानी में केवल जब ही बढ़ा सकेंगे जब हम लोग विदेश चले जाएं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ, सेल्फ मेड है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल आई टेल यू। तो इट इज़ इमेरिटल फॉर मी कि वो मेरे साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। मैं इस बात को ज्यादा मानता हूँ कि वो इस देश में ही रहकर कुछ काम कर रहे हैं। मैं अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे बहुत मेरे गुरु भी रहे हुए डॉक्टर शर्मा थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। ही वॉज वॉन्टेड टू गो टू सम अदर कंट्री, अपने फादर के पास गए, उन्होंने कहा भाई क्यों जा रहे हो? कहता जी वहाँ मेरा बहुत नाम होगा। उन्होंने एक बात लिखी थी, ये मैंने कादंबरी में पढ़ी हुई है, तो वो उन्होंने कहा कि बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आई स्टिल रिमेम्बर दैट थिंग। यू सी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके वहाँ जाने से हमारे देश की प्रोग्रेस में कितनी कंट्रीब्यूशन है, नंबर वन। नंबर टू, हम क्यों ये मान के चलते हैं कि भाई हम हमारा बच्चा ये नहीं कर पाएगा? देखिए मैं हम तीन भाई हैं लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते, दे आर नॉट विद मी। एंड आई टेल यू वो इतने मतलब माई फादर इज 80 ईयर्स नाउ, ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन। कहते नहीं मैं जब फिजिकली मुझे लगेगा कि भाई आई एम हैंडीकैप दैट्स वाई आई हैव टू बी विद यू देन आई विल कम टू यू। So it is irrespective. I mean, it is immaterial in my view.
स्वर्ण लीडर खुल्लर जी से जानना चाहूंगी कि ये हमारे भारतीय कल्चर हमारी भारतीय संस्कृति है, बच्चों को सिखाया जाता है कि आप बड़े होंगे आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, दिस इज वॉट वी आर टॉट राइट फ्रॉम बिगनिंग। तो आपको लगता है कि आपके बच्चों को आपके साथ रहना चाहिए, अगर बेटा है या बेटी है तो वंस यूव टेकन केयर ऑफ देम नाउ दे शुड टेक केयर ऑफ यू।
देखिए जहाँ तक मेरी पर्सनल है, मैंने कभी बच्चों को ये पढ़ाया ही नहीं कि आप पेरेंट्स की सेवा करिए। उसकी वजह ये थी कि आई टोल्ड देम वेरी आई एजुकेटेड देम वेरी वेल इवन इन इंग्लैंड, और मैंने उनको ये कहा कि भाई यू मस्ट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ नॉट ओनली फाइनेंशियली बट यू शुड बी एबल टू सर्व द वर्ल्ड एज सच, दिस वर्ल्ड इज वन सो दिस शुड नॉट कम एज my daughter I of course because of marriage migrated but my son came back from England, I brought him back, he set up a business here and then he migrated primarily because of corruption. He could not cope up, not only that he was trying to cope up with corruption. I did not let him cope up. I'll be very honest, I will be very critical when government officials were asking money one after another. And I was criticizing him all the time. I said, throughout this business, which makes you corrupt man. Mm-hmm. If you make million rupees or 10 million rupees through corruption, it's not worth anything. So he said, then I would like to leave this country. I said, you might as well leave this country. So he left.
कहीं emotional support की कमी नहीं महसूस हो रही?
To be very honest, my workload every day, even today at 73, is not less than 12 to 13 hours a day. तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मुझे ये फील ही नहीं होता कि दुनिया मेरे बाएं दाएं है, कोई मेरा सोशल सर्कल अपना ही इतना लिमिट हो गया है।
वेरी गुड।
तो मेरे पास समय ही नहीं है ना बच्चों के लिए. इनफैक्ट वी हैव गॉट योर टेलीफोन, क्या बोलते हैं स्काइप के, क्या है वो
स्काइपी,
वी आर एबल टू टॉक, आई नॉट एबल टू टॉक एट ऑल विद देम बिकॉज़
आपकी पर्सनल इमोशन ट्रांसफर.
एक्चुअली आई हैव गॉट 380 चिल्ड्रन, 90 चिल्ड्रन. अब देखिए हमारी एक बच्ची एमबीए में पढ़ रही है, शी इज एन ऑर्फन, शी इज एन ऑर्फन, शी हर मदर डाइड 7 इयर्स बैक. And we, I've been looking after her since last 7 years. She lives on one lung. Her, she became TB case, resistant TB case. Then we put her in Delhi. Then she said will die. She did not die because I taught her yoga. I presume I shy because I taught her yoga. And she is living. She is doing MBA near Jaipur. And we talk every day. You see, I talked to my daughter once 2 weeks perhaps, but I talk to her every day. Then I've got a child whom I called future Dr. Manmohan Singh. He's never taken marks less than 98%. I've got over 49 children above 80%.
Dr. Mangal se ek question puchna chahungi. Kya hamara रिटायरमेंट के बाद अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखना जरूरी है?
देखिए मैं उस समय भी बता चुका हूँ आपको, दो चीजें होती हैं, एक काम और एक शरीर. जब आप काम करना बंद कर देते हैं, चाहे रिटायरमेंट के बाद या आप किसी रूप में, तो बस एक ही चीज़ बचती है, वो है शरीर. आप उसके बारे में सवेरे से शाम से सोचते हैं और वो चीज़ें भी महसूस करते हैं जो उस शरीर को नहीं है. मतलब आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है. इसलिए मैं हरदम ये मानता हूँ कि भगवान ने जब तक आपको आयु दी है, काम करते रहिए करते रहिए, आप मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहेंगे और शारीरिक रूप से बिल्कुल मतलब काफी हेल्दी रहेंगे.
आपका क्या कहना है? We should be engaged even after retirement?
डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि मेंटली तो बहुत ही जरूरी है बिजी रहना. माइंड तो सेटल है, माइंड को और नथिंग लाइक, मैं टीचर हूँ, मैं कह रहा हूँ रीडिंग में राइज करते हो,
कोई भी तरीका
आज रीडिंग हैबिट कम हो रही है. रिटायर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, दो से पूछ रहे कौन सी. रीडिंग बहुत जरूरी है,
कोई भी हॉबी ले,
यही ज्ञान.
कोई भी एक हॉबी ले लें, चाहे वो सोशल सर्विस हो, चाहे वो रीडिंग हो,
चाहे वो साहब तो हमारे मॉडर्न अबू बिन आदम हैं.
एक छोटी सी बात कहूँ मैं, अभी यहाँ आने से पहले तो मैं स्लम्स में घूम रहा था सुबह 9:30 बजे से लेके और तकरीबन 11:30 बजे तक, 2-2.5 घंटे हमने 3 स्लम्स में सर्वे किया और वहाँ पर हमने जगह ढूंढी है जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाएंगे. और अब सीनियर सिटीजन को मैं मिलता रहता हूँ, ये नहीं मैं मिलता नहीं और रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत ताफा, लेकिन पता नहीं क्या वजह है अगेन कि वो 90% सीनियर सिटीजन वहाँ बैठ के गप मारते हैं, ताश खेलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को सुबह से शाम तक, सिर्फ क्रिटिसिज्म है. लेकिन आके ये नहीं करते, जब मैं उनको कहता हूँ आइए भाई स्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल फरीदाबाद, आप पता नहीं कितना भावना ये आपने देखा है. मेरा एस्टिमेट ये है कि फरीदाबाद, एक दफ़ा पढ़ा था कहीं, गलत भी हो सकता हूँ, 59% ऑफ फरीदाबाद इज लिव्स इन स्लम्स और दिस इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एनी मेजर सिटी परसेंटेज ऑफ स्लम्स इन द वर्ल्ड. और अगर आप स्लम्स में जाइए, मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ सीधा, आप, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ क्योंकि हमने ज़िंदगी अलग गुजारी है, वो इंसानी ज़िंदगी है ही नहीं. और अगर कोई आदमी ये कहे स्पिरिचुअलिज्म की और मंदिरों की, तो मेरे को इतना बेहुदा लगता है कि आप पैसा कैसे और वक्त कैसे ज़ाया कर सकते हैं परमात्मा के बारे में, जबकि इंसान की ज़िंदगी इतनी घटिया है. घटिया नहीं है साहब, आप कुछ भी कहिए, आप वहाँ ज़िंदगी है ही नहीं. और जितना मैं स्लम में घूमा हूँ, मैं 5 साल पहले 2 स्कूल चलाता था, बंद हो गए और फिर से शुरू कर रहा हूँ विद अ टारगेट ऑफ 10,000 चिल्ड्रन इन स्लम्स इन नेक्स्ट 2 ईयर्स. तो सीनियर सिटीजन को इन मास आ जाना चाहिए इसके अंदर पर्सनली, बिकॉज उनके पास लियाकत और पैसा बहुत है. लियाकत भी बहुत है,
एक्सपीरियंस है.
नहीं एक्सपीरियंस नहीं सर, एजुकेशन बहुत है उनके पास, उनके पास लियाकत है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास पैसा है और पैसा है, लेकिन वो आते नहीं,
कमी है तो लोगों के आगे बढ़ने की,
हमारी पर्सनल फेलियर्स हैं, उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे.
और इसी मोड पे जैसे स्क्वाड्रन लीडर खुल्लर जी ने कहा कि आज भी हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें इतनी लियाकत है, कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, टाइम है एंड टॉप इट ऑल पैसा है, वो अगर जुड़ जाएं समाज की सेवा करने में तो आज हमारा भारत कुछ और ही होगा. यही बात आई थिंक आप लोग कहना चाहते थे. तो ये आवाज़ हमने अपने लिसनर्स तक पहुँचाई है एंड आई विल थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोग सब यहाँ पर आए, अपना कीमती समय आप लोगों ने हमें दिया और हमारे लिसनर्स को वो एक्सपीरियंस शेयर किया उनके साथ जो आपने इतनी पूरी जर्नी तय करके एक्सपीरियंस गेन किया है. थैंक यू सो मच ऑल फॉर कमिंग टू दिस स्टूडियो.
थैंक यू, थैंक्स वेरी मच. उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा लोग बाग जुड़ेंगे और अपनी सिटी को कम से कम
यही हमारी कोशिश है
जी.
एंड आप लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड फील लाइफ.